पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र रूही से शादी का विरोध करने के बावजूद उसे मंडप में ले जाता है। इस अध्याय में रुद्र रूही को मंगलसूत्र पहनाता है, मांग में सिंदूर भरता है और उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। देवांश दिशा से कहता है कि वो उसे छोड़कर दूर ना जाए। अगली सुबह रूही और रूही एक दूसरे के करीब सोते हैं। परिवार के सदस्य रूही के बारे में चिंता करते हैं और कामना रूही के बारे में नकारात्मक बात करती है, जिसके बाद रणविजयी उसे चुप कराते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 64। अब आगे रूही के दोनों पैर रुद्र के पैरों के ऊपर, उसका एक हाथ रुद्र के सीने पर था और वे अपना चेहरा रुद्र के गर्दन में छिपाए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह आराम से सो रही थी। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वे अपना चेहरा रुद्र के सीने पर रगड़ने लगती हैं, जिसके रुद्र की आंखें एक झटके में खुल जाती हैं और वे अपनी नीली आंखों से एकटक रूही को देखने लगता है। रूही जब अपना चेहरा रुद्र के सीने पर रगड़ने लगती है तो रुद्र की आंखें एक झटके में खुल जाती हैं और आंखें खुलते ही अपने सामने अपनी रूह को इतने करीब देख उसकी आंखों में सुकून भर जाता है। आज के पहले उसे ये सुबह कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी आज उसे अपनी रूह के साथ लग रही है। वहीं रूही, जिसकी आंखें अब हल्की हल्की खुलने लगी थीं, जब उसे महसूस होता है कि वे अपना चेहरा तकिए में नहीं बल्कि किसी सख्त चीज पर रगड़ रही है, इस बात को महसूस करते ही वे अपनी आंखें एक झटके में खोल देती है। पर जैसे ही वे अपनी आंखें खोलती है, उसकी हल्की ग्रीन आंखें जाकर सीधा रुद्र के नीली आंखों से टकरा जाती हैं और वे अपने शॉक एक्सप्रेशन के साथ रुद्र को देखने लगती है। रुद्र को अपने सामने देख वे बिना इधर उधर ध्यान दिए रुद्र को देख गुस्से में बोली, तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो मेरे कमरे से, वरना मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूंगी। रूही की बात सुनकर रुद्र रूही के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, माय इनोसेंट रूह, इस जगह को और खुद को ध्यान से देखो। तुम अपने उस अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि मेरे घर, मेरे कमरे और मेरे बिस्तर पर हो, वे भी मेरी बीवी बनकर। रुद्र की बात सुनकर रूही होश में आती है और अपने चारों तरफ देखती है। तब जाकर उसे याद आता है कि कल किस तरह से उसके मना करने के बाद भी रुद्र ने उसकी जबरदस्ती शादी की है, जिसे याद कर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी उसकी नज़र रुद्र के ऊपर जाती है। तब जाकर उसे महसूस होता है कि वे रुद्र के कितने ज्यादा करीब है, जिसे महसूस कर रूही तुरंत ही रुद्र के ऊपर से उठ जाती है और एक झटके में रुद्र के बिस्तर से उतर उसकी बेड से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं रुद्र, जो रूही के बच्चों जैसी एक एक हरकतों को नोटिस कर रहा था, रूही के यूं दूर जाकर खड़े होने पर रुद्र रूही को अपनी नीली आंखों से एकटक देखने लगता है, क्योंकि रुद्र की बड़ी की शर्ट रूही के घुटनों तक आ रही थी। साथ ही साथ उसकी शर्ट बड़ी होने की वजह से वे रूही के कंधे से थोड़ी नीचे आ गई थी, जिसके रूही के गोरे कंधे और उसकी हल्की हल्की क्लीवेज शो हो रही थी, जिसे देख रुद्र को रूही से बेइंतहा प्यार करने का मन कर रहा था। वहीं रूही जब रुद्र को यूं खुद को देखता पाती है तो वे अपनी हल्की ग्रीन आंखों से खुद की तरफ देखती है और उसकी नज़र जैसे ही खुद पर पड़ती है वे शॉक हो जाती है और रुद्र की तरफ देख गुस्से में कहती है, ये क्या बदतमीजी है, ये ड्रेस मुझे किसने पहनाई, मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? रूही की बात सुनकर रुद्र रूही का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेता है, जिसके रूही एक झटके में रुद्र के ऊपर गिर जाती है और उसकी नाक रुद्र के खुले सीने से टकरा जाती है, जिसकी उसकी नाक पर हल्का सा चोट लग जाता है क्योंकि रुद्र का शरीर काफी ज्यादा स्ट्रांग और सख्त था। रूही अभी रुद्र को कुछ बोल पाती उसके पहले ही रुद्र बिना रूही को कुछ भी बोलने का मौका दिए उसे तुरंत पनट देता है, जिसकी रूही रुद्र और बिस्तर के बीच फंस गई थी, जिस वजह से रूही को काफी गुस्सा आता है और वे जैसे ही रुद्र को कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाली होती हैं, वैसे ही रुद्र रूही के बेहद करीब आ रूही के होठों पर उंगली रख बोला, श, श, रूह, तुम कितना बोलती हो, अगर मेरे सामने मेरी रूह बोलती ही रह जाएगी तो मैं अपनी रूह को प्यार कैसे करूंगा, और रही बात कपड़ों की तो रूह मैं तुम्हारा पति हूं और पति के रहते हुए कौन ही तुम्हारी ड्रेस चेंज करेगा, तुम्हें बिना कपड़ों से देखने का, तुम्हें प्यार करने का, तुम्हारे पीछे पागल होने का हक सिर्फ मुझे ही दो, क्योंकि रूह तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। रुद्र की बात सुनकर रूही के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि एक ही पल में उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी, कोई उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करेगा और बिना उसकी मर्जी से उसे बिना कपड़ों से देखेगा और उसके इस तरह करीब आएगा। इस बात को याद कर रूही रुद्र को देख उसे अपनी पूरी ताकत लगा धक्का देते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करते हुए, मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कभी भी नहीं रहूंगी, मैं अभी के अभी अपनी दी के पास जाऊंगी। इतना बोल वे बिस्तर से उतरने लगती है, जिसे देख रुद्र रूही की कमर को पकड़ उसे वापस से बेड पर धक्का देते हुए गुस्से में बोला, रूह तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात मत किया करो, क्योंकि मुझे खुद के अलावा किसी की भी ऊंची आवाज नहीं पसंद, पर रूह तुम इस तरह से नहीं मानोगी, तुम्हें सजा तो देनी ही पड़ेगी। रुद्र की बात सुनकर रूही अपना सर ना में हिला देती है, पर रुद्र रूही की कोई बात नहीं सुनता और तुरंत रूही के होठों पर अपने होठ रख उसे काफी पैशनेट होकर किस करने लगता है, जिसे महसूस कर रूही रुद्र को खुद से दूर धक्का देने लगती है, जिसके रुद्र को किस करने में डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वे रूही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ उसके हाथ को ऊपर कर रूही को फिर से पूरी शिद्दत से किस करने लगता है। कुछ देर यूं ही रूही को किस करने के बाद रुद्र अपनी जीभ रूही के मुंह के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख रूही अपने मुंह को तेजी से बंद कर लेती है, जिस वजह से रुद्र रूही के मुंह के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था, जिसे देख रुद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वे रूही की कमर को पकड़ उसे तेजी से प्रेस करता है, जिसके रूही की ना चाहते हुए भी एक चीख निकल जाती है, जिसका फायदा उठा रुद्र तुरंत रूही के मुंह में एंटर हो जाता है और रूही के पूरे मुंह को अपनी जीभ से एक्सप्लोर कर उसे फिर से किस करने लगता है। रुद्र को किस करते करते लगभग 20 मिनट हो गए थे, जिस वजह से अब रूही को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसे देख रुद्र रूही के होठों को छोड़ देता है मगर उसके दूर नहीं होता।
जिसे देख रूही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, वहीं रुद्र रूही को लंबी लंबी सांसें लेते हुए देख अपनी आंखों को बंद कर रूही की सांसों को महसूस करने लगता है, क्योंकि रुद्र रूही के चेहरे के करीब ही था, जिस वजह से रूही की सांसें सीधा रुद्र के चेहरे से टकरा रही थीं, जो रुद्र को बहकाने के लिए काफी थी।